नहीं, हाँ, चिंबुक हथेली पर रखे विचार में अधमुदी आंखों से दिव्या ने उत्तर दिया। छाया ने नेत्रों में अनुनय भर प्रार्थना की, भद्रे अर्ध आधार लेकर सेवा में स्थानागार साथ चलने की आज्ञा दासी को देने की कृपा करेंगी। आर्ध उपस्थित करने के प्रसंग की स्मृति से विरक्त अनुभव कर दीर्घ निश्वास लेकर दिव्या ने उत्तर दिया, वाचाल तू बड़ी निर्लज्ज है। पर्यक छोड़कर उसने छाया को आज्ञा दी, जा कंचुकी को आदेश दे कि सारथी को रथ प्रस्तुत करने के लिए कहे। दिव्या रथ प्रस्तुत हो जाने के संदेश की प्रतीक्षा न कर अंतःपुर से स्थानागार होती हुई प्रसाद के सिंह द्वार की ओर चली जा रही थी। अपने पीछे दुकूल और पुष्पमालाएं बाहों पर लिए चली आती छाया को उसने आज्ञा दी, महादेवी से निवेदन कर कुमारी देवी मल्लिका के समाज में जा रही हैं। देवी उद्यान मार्ग से सिंह द्वार की ओर जा रही थी। मार्ग में खड़े अत्यंत वृद्ध निर्बल दृष्टि दास तारुक को अपनी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि गड़ाए देखकर दिव्या ने मुस्कुराकर पूछा, मातुल तारुक शरीर स्वस्थ है? तारुक ने दिव्या को पहचान कर स्नेह और आदर से विभोर थुथलाते स्वर में आशीष दी, कुमारी दीर्घायु हो, ससुर प्रसाद की एक छत्र स्वामिनी हो, अनेक दिन पश्चात कुमारी के दर्शन हुए, भद्रे किस दिशा में प्रस्थान करने की इच्छा है? देवी मल्लिका के दर्शन के लिए मातुल तारुक, दिव्या ने उत्तर दिया। तारुक ने कुमारी के मुख के समीप आयु से निर्बल नेत्र लगाकर प्रश्न किया, क्या स्वामिनी अनेक दिन कला और विनोद से दूर रहने के कारण ही स्थिल और म्लान जान पड़ती हैं? कुछ उत्तर न सूझने से दिव्या ने स्थानागार की ओर देखकर प्रश्न किया, मातुल छाया को विलंब क्यों हो रहा है? और घूम कर देखा, छाया एक दक्षावितान की ओट में दिखाई दी, उसके समीप दास बाहुल था। उस ओर से दृष्टि हटाकर दिव्या ने तारुक से पुनः प्रश्न किया, मातुल रथ में विलंब क्यों हो रहा है? उत्तर मिला, कुमारी दास द्वार पर जाकर देखें। दिव्या पीछे न देख उत्तर दिए बिना द्वार की ओर बढ़ गई। छाया दूत पदों से सम्मुख प्रस्तुत होकर स्वामिनी को रथ पर चढ़ने के लिए उसके लहराते हुए उत्तरी और अंतरवाशक को समेटने लगी। पथ के अशम्य और अश्व के वेगवान होने के कारण रथ हिलोरे ले रहा था। दिव्या की दृष्टि कभी इधर उधर और कभी रथ के अधोभाग में बैठी छाया पर पड़ जाती। स्वामिनी से दृष्टि मिलने पर उसके शैथिल्यपूर्ण गंभीरता भंग करने के लिए छाया बोली, भद्रे अनेक दिन पश्चात देवी मल्लिका के प्रसाद में जा रही हैं, आज भद्रे को संतोष होगा। अपनी कल्पना में गहरी डूबी दिव्या ने छाया की बात को भी अपने ही विचारों के प्रसंग का अंग समझकर स्वयं अपने ही को उत्तर दिया, हाँ, परंतु जाने आयुष्मान आए अथवा ना आए। कौन आयुष्मान आए? उत्सुकता से गर्दन उठाकर छाया ने रहस्य के स्वर में प्रश्न किया। छाया की आंतरिकता से उत्साह पाकर दिव्या ने उत्तर दिया, आयुष्मान पृथ्वीसेन। उस समय रथ के पिछले भाग में बैठी कंचुकी पर उसकी दृष्टि पड़ी। सभ्रम से उसने अपनी बात पूरी की, आर्य पृथ्वीसेन ने तात के धर्मस्थान में मेरे द्वारा आवेदन किया था, उसी संबंध में वह पुनः अपने कल्पना में खो गई। देवी मल्लिका संध्या समय समाज के प्रयोजन के प्रसाधन में व्यस्त थी। दासी ने उन्हें सिंह द्वार पर धर्मस्य की प्रपौत्री दिव्या का रथ पहुंचने का समाचार दिया। व्याग्रता में सब छोड़कर मल्लिका नंगे पांव बछड़े के लिए अधीर गाय की भांति सिंह द्वार की ओर चल पड़ी। दिव्या को आधे मार्ग में पाकर अंक में ले उसका सिर सूंघ स्नेह से उसकी चुंबुक उठा मल्लिका ने उपालभ्य दिया। वत्से, इतने दिन तुम क्या मुझे भूल गई थी? रुचिरा मुझे वियोग दे गई तो क्या तुम भी भूल जाओगी? मल्लिका ने अपने सजल नेत्र पूंछ दिव्या का मुख ध्यान से देखकर प्रश्न किया, हाय तुम निस्तेज क्यों हो रही हो? स्वस्थ हो ना? अश्वनी कुमार तुम्हारी रक्षा करें, तुम कुछ चिंतित हो? मधुपर्व को चौथा पक्ष बीत गया, तुमने अपनी बूढ़ी होती माँ की सुध न ली। मल्लिका एक ही सांस में सब कुछ कह गई। स्नेह के इस अतिरेक से विभोर होकर दिव्या कुछ उत्तर न दे पाई। अपना सर उसने मल्लिका के उमगते हृदय पर रख दिया। उसके नेत्र संतोष में मुद गए, परंतु नेत्र खुलते ही उसकी दृष्टि भटकने लगी। क्या आर्य अभी तक नहीं आए? अभी समय नहीं हुआ। दिव्या को अंक में लिए अपने कक्ष की ओर लौटती हुई मल्लिका अब भी अपना उपालभ्य कहे जा रही थी। पुत्री, तुम्हें मेरी आशा हो, मेरी आत्मा की संतति हो। देव ने मेरी रुचिरा को छीन लिया। तुम्हें देखकर मैं उसे भुला रही थी और तुम इतनी निठुर हो। वत्से, मेरा न सही, वीणा पाणी देवी सरस्वती के कोप का भय करो। पुत्री, कितने जन्म की तपस्या से देवी अलौकिक प्रतिभा का वरदान देती हैं, उसकी उपेक्षा और निरादर करने से देवी के अभिशाप का पात्र बनना पड़ता है। देवी ने तुम्हें अपना अंश अर्पित किया है। मल्लिका ने विशेष उत्साह से अपने श्रृंगार किया। विशेष उत्साह से उसने अभ्यागतों के लिए कापिसाइनी और कादम्बनी सुरा के कुतुब प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। वृद्ध वादक विभु को दिव्या के आने का समाचार देकर वादन में विशेष सतर्कता का आदेश दिया। अभ्यागतों ने उपाधान के आश्रय विष्टरों पर स्थान ग्रहण कर लिया। मल्लिका दिव्या को साथ लेकर समाज में उपस्थित हुई। देवी ने वादकों को गंधारी के स्वर उठाने का संकेत कर स्वयं आलाप आरंभ किया। संगीत के पश्चात उसने छलीन नृत्य के लिए आदेश दिया। दिव्या से सहयोग देने का अनुरोध कर उसने स्वयं नृत्य आरंभ किया। देवी मल्लिका के अनुरोध की उपेक्षा दिव्या के लिए संभव न थी, परंतु वह नृत्य में तन्मय न हो सकी। उसके नेत्र निरंतर दुविधा में पथ और द्वार की ओर लगे रहे। उपस्थित समाज ने सरस्वती पुत्री सांगल के सर्वश्रेष्ठ कलाविद युवती को साधिवाद दिया। स्तुति और संतोष प्रकट करने के लिए मल्लिका ने आसन के सम्मुख भेंट उपस्थित की, परंतु मल्लिका मौन थी। नृत्य समाप्त हो जाने पर दिव्या को संबोधन कर उसने कहा, पुत्री अनाभ्यास विद्या का शत्रु है। और पूछा, क्या तुम्हारा चित्त अस्थिर है? मल्लिका के सम्मुख अपराध स्वीकार कर दिव्या ने क्षमा याचना की, माता मैं अस्वस्थ हूँ, केवल दर्शनार्थ चली आई हूँ। मल्लिका शिष्या की पीठ पर स्नेह से हाथ रखे बैठी रही। दिव्या की दृष्टि प्रति कतिपय क्षण में सिंह द्वार और पथ की ओर भटक जाती। समाज लगभग समाप्त होने को था। पृथुसेन द्वार से आता हुआ दिखाई दिया। दिव्या ने संतोष का श्वास लिया, परंतु फिर उस ओर देख न सकी। न देख सकने पर भी उसने जाना, पृथुसेन अभ्यागतों के लिए लगे उपाधानों में चुपचाप पीछे की ओर जाकर बैठ गया है। वह चिंताग्रस्त और स्थिर जान पड़ा। दिव्या ने हृदय में अनन्याय की वेदना अनुभव की। मल्लिका के संकेत से दासियों ने अभ्यागतों के सम्मुख सुरापात्र और तांबुल उपस्थित किए। आलाप और परिहास से चतुश्शाल गूंज रहा था, परंतु दिव्या उस आनंदोल्लास में सहयोग न दे पाने से असुविधा अनुभव कर रही थी। वह देख रही थी प्रतुसेन भी एक ओर निरुत्साह बैठा था। वह मल्लिका के समस्मित अभिवादन का उत्तर एक क्षीण मुस्कान से देकर मौन और गंभीर थी। समाज विसर्जन से मल्लिका ने रास नृत्य का प्रस्ताव किया। दिव्या के शैथिल्य के कारण मल्लिका ने सहयोग के लिए न कहा, परंतु पृथुसेन से सम्मिलित होने का अनुरोध किया। देवी पृथुसेन के पद लाघव की प्रशंसिका थी। पृथुसेन क्षमा मांगकर अपने आसन पर ही बैठा रहा। रास नृत्य आरंभ होने पर आसनों की व्यवस्था बदल गई। दिव्या शीतलता और वायु के लिए चतुशाल से बाहर जा रही थी। पृथुसेन के समीप पहुंचकर उसके कुशल क्षेम के विषय में प्रश्न किया। पृथुसेन कुमारी के आदर में आसन छोड़कर उत्तर देता हुआ दिव्या के साथ ही उद्यान में आ गया। आर्य के न्याय आवेदन के प्रति तात विशेष रूप से चिंतित हैं। दिव्या ने पृथुसेन के प्रति संवेदना से कहा, वे संभवतः गण परिषद के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुस्कुराने का असफल यत्न कर पृथुसेन ने कहा, तात धर्मस्य से मैंने परिषद का निर्णय जानने के लिए प्रार्थना नहीं, उसके न्याय शासन से निर्णय के लिए आवेदन किया था। आर्य का कथन सत्य है, संवेदना के स्वर में दिव्या ने स्वीकार किया। पृथुसेन गंभीर होकर बोला, भद्रे ने सारिका का साक्ष्य देकर जिस न्याय का आश्वासन दिया था वह न्याय गण परिषद का नहीं धर्मस्थान का न्याय था। भद्रे, मैं वर्ण का न्याय नहीं धर्म का न्याय चाहता हूँ। गण परिषद स्वार्थों का संघर्ष है, धर्मस्थान न्याय का आसन है। दिव्या ने अपनी अंगुलियों के नखों पर दृष्टि लगाए उत्तर दिया, आर्य का कथन सत्य है। और भद्रे, पृथुसेन फिर बोला, गण परिषद से सहायता पाकर जो न्याय मुझे धर्मस्थान से मिलेगा उसके लिए मैं धर्मस्थान के सम्मुख आभारी न होऊंगा, वह न्याय नहीं संबल का सम्मान मात्र होगा। पृथुसेन के स्वर और शब्दों से दिव्या ने हृदय पर आघात अनुभव किए। सिर झुकाकर उसने स्वीकार किया, आर्य सत्य कहते हैं, धर्मस्थ का कार्य गण परिषद की आज्ञा का पालन नहीं परिषद को न्याय का मार्ग दिखाना है। पृथुसेन बोला और दिव्या का सिर झुकाए मौन देखकर करुणा की मुस्कान से प्रश्न किया, कुमारी की शिविका में कंधा देने की मेरी महत्वाकांक्षा क्या कुमारी की दृष्टि में भी अपराध है? नहीं आर्य, दिव्या ने दृष्टि उठा उत्तर देने का यत्न किया, परंतु नेत्रों में आर्द्रता अनुभव होने से गर्दन झुक गई। उसने कहा, मैं आदर के लिए कृतज्ञ हूँ। उसकी ग्रीवा और भी झुक गई। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। मौन भंग करने के लिए पृथुसेन बोला, भद्रे, शीतल वायु के लिए समीक कुंज में ताल के शिलातट पर विश्राम करें। दिव्या निरुत्तर सिर झुकाए पृथुसेन के संकेत में चल पड़ी।